اب تک خیر سے ہم نے اس کے پانچ چیپٹر پڑھ لیے، پانچ لیکچر جو حضور مرشد کریم نے لکھے. ان پانچ لیکچرز میں جو بنیادی نقطہ تھا کہ ایک خالق ہے اور ایک اس کی مخلوق ہے، خالق نے مخلوق کو کیوں تخلیق کیا، یہ بات مخلوق کے سمجھنے کی ہے. کیونکہ خالق کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیوں تخلیق کیا. اب چونکہ مخلوق کو اس میں سے حضرت انسان کو اس نے اختیار دے دیا کہ وہ اپنی چوائس کو ایکسرسائز کر کے اللہ کا نائب بننے پہ آمادہ ہو جائے. دیکھیں کیسا باریک نقطہ ہے، اللہ نے مخلوق میں سے حضرت انسان کو یہ اختیار دے دیا، اور پھر اس سارے پروگرام کی ایک اجمالی سی شکل حضور مرشد کریم نے وضاحت کی کہ کس طرح اللہ کے ذہن میں ایک پروگرام تشکیل پایا، پھر آگے اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں، کتنی وسعت ہے اس میں، اس کا اندازہ کرنے کو کتاب المبین، پھر اس کے میں 30 کروڑ الواح محفوظ، یعنی گویا ایک کتاب ہے پورے پروگرام کی. اب اصل میں تو ایک ہی پروگرام ہے لیکن آگے اس کے اتنے زاویے ہیں، یعنی اس کے اندر 30 کروڑ لوح محفوظ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس پروگرام کو 30 کروڑ طریقوں سے ڈسپلے ہونا ہے. پھر آگے ہر لوح محفوظ کا پروگرام 80,000 حضیروں پہ مشتمل ہے، یعنی کہ 80,000 اس کے سٹائل ہیں، اس کی ٹائپس ہیں. پروگرام ایک ہی ہے، اول و آخر پروگرام ایک ہی ہے. تو آج ہم خیر سے جی لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے، اور اس میں انہی چند باتوں کو جو آپ نے پڑھ لی ہیں انہی کو لے کے مرشد کریم آگے چل رہے ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 6، یہ صفحہ نمبر ہے جی 56. اس کا عنوان ہے ادراک اور وجدان. اب ادراک کسے کہتے ہیں؟ ادراک عام مفہوم یہ جاننے کو کہتے ہیں، سمجھنے کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیا چیز ہے ادراک، وہ ذرا ہم یہ پڑھیں گے تو وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. آسمانی صحیفے اور الہامی کتابیں بیان کی ایک مخصوص طرز رکھتی ہیں. تفکر کیا جائے تو یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طرز استدلال یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، استدلال، طرز استدلال، اللہ کا دلیل دینے کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف طرزوں اور مثالوں سے بیان کرتے ہیں. ایک ہی بات کو مختلف طرزوں اور مثالوں سے بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان لاشعوری اور روحانی علوم سے واقفیت نہیں رکھتا، اور روحانی علوم شعوری علوم سے مختلف ہوتے ہیں. الہامی علوم کا شعور پر وزن پڑتا ہے. یہ جو بعض لوگوں کو یہ کتابیں بوجھل لگتی ہیں، بھاری لگتی ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے. تو یہ الہامی علوم کا شعور پر وزن پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کر کے شعور کے اوپر زائد وزن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اللہ کے مختلف پیرایوں میں بات کو بار 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 واضح کرنے کی اصل حکمت، کہ شعور پہ جو وزن پڑ رہا ہے وہ نہ پڑے. یعنی اللہ تو اتنا خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کا. کتاب لوح قلم جو حضور قلندر باب اولیاء کی تصنیف ہے، ہم سب کے سامنے، اس کتاب کا طرز استدلال خالص روحانی اور الہامی ہے. اس کتاب کا طرز استدلال اور طرز بیان دونوں خالص روحانی اور الہامی ہے. ایک ہی بات کو بار بار اور مختلف پیرایوں میں اور مختلف مثالوں میں بیان کیا جائے. اب دیکھیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوح و قلم میں کوئی بار بار کوئی ایک بات, ہر بار ایک نئی بات بیان ہو رہی ہے. نہیں, چند باتیں ہیں جن کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے, کون بتا رہا ہے؟ یہ مرشد کریم بتا رہے ہیں جو شارح ہیں اس تصنیف کے جس کو لوح و قلم کہا جاتا ہے. یہ اس کی شرح میں فرما رہے ہیں. اور یہی طرز استدلال قرآن کا بھی ہے, اور یہی طرز استدلال دوسری الہامی کتب توریت, زبور, انجیل اور گیتا کا ہے. لوح و قلم کی تشریح میں بھی یہ ایک ہی بات کو کی تشریح میں بھی ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا ہے. بتانا یہ مقصود ہے, اور یہ مقصود بتا رہا ہے, بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی علم, اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو کائنات کی بابت ہے, اللہ تعالیٰ کا کائناتی علم درجہ بدرجہ تنزل کر کے مخلوق کے خد و خال اور زندگی کے تقاضے ہیں, یعنی کہ وہ خد و خال بھی بنتا ہے وہی علم اور زندگی کے تقاضے بھی بنتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم سیڑھی بہ سیڑھی صعود کرتا ہے, یعنی اوپر کو چڑھتا ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی کہ اوپر سے آتا ہے اور پھر واپس اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے. تحقیق ہر چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جب نزول کرتا ہے تو مخلوق کا ادراک بن جاتا ہے. دیکھیے, مخلوق کا ادراک بن جاتا ہے. تو گویا جب علم آپ کے حواس کی گرفت میں آ گیا, آپ کی فہم کی گرفت میں آ گیا, تو وہ ادراک کہلایا. تو اللہ تعالیٰ کا علم جب نزول کرتا ہے, جب اللہ کا علم نزول کرتا ہے تو مخلوق کا ادراک بن جاتا ہے. یہ علم ادراک بن کر ایک نقطے پر کچھ دیر قیام کرتا ہے, یعنی اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو نگاہ بن جاتی ہے. ادراک میں جب تک گہرائی پیدا نہیں ہوتی خیال کی کیفیت رہتی ہے. غور کریں ذرا اس جملے پہ, خیال کی کیفیت, یعنی کہ علم پہلے درجے پہ وہ وہمہ کی صورت میں آیا اور پھر وہ نگاہ بنا اور وہ خیال کی کیفیت ہے. ادراک جب خیال کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہلکا سا عکس بنتا ہے. یہ عکس احساس پیدا کرتا ہے. جب خیال کی ادراک خیال کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہلکا سا عکس بنتا ہے, یعنی یہ تصویر بننے لگی, اسی کو تصور کہتے ہیں. اور پھر یہ عکس, یعنی وہ تصور, احساس پیدا کرتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ خیال کی حدود میں احساس کام تو کرتا ہے لیکن اس کی حیثیت صرف نظر کی ہوتی ہے. اور جب یہ احساس, وہ جو خیال کی وجہ سے احساس پیدا ہوا, وہ احساس ایک ہی نقطے پر چند لمحوں کے لیے مرکوز ہو جاتا ہے تو اس نقطے میں خد و خال اور شکل و صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ خد و خال اندرونی نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں. نگاہ کے سامنے آنے والے ماورائی خد و خال, کیونکہ ابھی وہ مادی خد و خال نہیں بنے اس لیے ان کو ماورائی کہا. ما جو کچھ ہے, ورا اوپر, तो मावराई जो यहाँ जो कुछ है उससे ऊपर के खदो खाल को मावराई खदो खाल कहा। जब एक ही नुक्ते पर चंद लम्हे और मरकूज रहते हैं, यानी निगाह के सामने आने वाले मावराई खदो खाल जब एक ही नुक्ते पर चंद लम्हे और मरकूज रहते हैं, या यूं कहिए कि निगाह उन मावराई खदो खाल पर चंद लम्हे और मरकूज रहती है, तो वो नुक्ता चाहे वो नौ है, चाहे वो फर्द है या शय है, गोया हो जाती है, यानी बोलने लगती है, कुवते गोयाई, यानी वो नुक्ता कम्युनिकेट करने लगता है, बताने लगता है कि मैं क्या हूं। इस तरह नहीं बोलता जिस तरह मैं और आप बातें करते हैं, लेकिन उसी को गोयाई कहा जा रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। जब ये कम्युनिकेटिव पावर कुव्वते गोयाई अगर जरा देर और उस नुक्ते या फर्द की तरफ मतवज्जो रहे, तो फिक्र और एहसास में रंगीनी पैदा हो जाती है। यहां से फिर रंगों का खेल शुरू होता है और निगाह अपने इर्द गिर्द नए रंगी का एक हजूम महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि मैं रंगों में घिर गई। किसको? हमारी निगाह को, हमारे फिक्र के एहसास को। अब इस तशरीह से ये कानून पूरी तरह वाजे हो जाता है कि इल्म ही की जुदागाना हरकत या हालतों का नाम ख्याल, निगाह, गुफ्तार, शामा यानी सूंघना और लम्स हैं। एक ही हकीकत या एक ही इल्म मुख्तलिफ रूप बदलता रहता है। एक ही हकीकत, हकीकत एक ही होती है वो, या एक ही इल्म रूप बदलता रहता है। कहीं वो निगाह कहलाता है, कहीं वो ख्याल कहलाता है, कहीं वो तसव्वुर कहलाता है, कहीं वो गुफ्तार बन जाता है, कहीं वो तसव्वुर की खुशबू आने लगती है और कहीं उसका लम्स महसूस होने लगता है। जिस तरह ख्याल इल्म है, इसी तरह निगाह भी इल्म है। क्योंकि हर चीज की बुनियाद इल्म है, इसलिए ख्याल और निगाह के बाद की तमाम हालतें भी इल्म है। इल्म की ये कैफियत नजूली है, यानी कि ये ऊपर से नीचे को आ रहा है। तो इल्म नजूल करके आलम नासूत तक आता है, यानी मटेरियल वर्ल्ड तक आता है, द वर्ल्ड ऑफ मैटर आलम नासूत तक आता है, और फिर इंसान की हिस गोश्त पोस्त को छू लेती है। कौन छूता है? हिस। किसको? जो उसके सामने एक गोश्त पोस्त का जिसम होता है। और यही कैफियत, यानी इल्म की तनज्जल याफ्ता शक्ल, किसी शय की महसूसियत के लिए इंतहा है। यानी यहां पे आके महसूसात की हद हो जाती है, वो अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। आदमजाद या कोई भी मखलूक ऊपर से नीचे उतर कर पैदा होती है, रूह या अमरे रब्बी अपने इजहार के लिए और अपनी जलवा नुमाई के लिए गोश्त पोस्त का एक जिस्म तख्लीक करती है। उसके बाद फिक्र इंसानी तनज्जल याफ्ता शक्ल से सऊद की तरफ मतवज्जो हो जाती है, यानी पहले नजूल करती है, ऊपर से नीचे को इल्म आता है, आता है, आता है, और फिर वो पहली हिस या पहले आवाज से दूर होने लगती है और वापसी का सफर शुरू करती है, यानी वापस ऊपर को चढ़ना शुरू कर देती है। दूरी से मुराद यह है कि पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा अब दूसरे दिन में दाखिल होता है, तो पहला दिन जिंदगी के नजूल का रद्द अमल है। यही रद्द अमल हमें मकानियत और जमानियत का एहसास दिलाता है। बच्चा पैदा होता है, एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे में बच्चे की तमाम सिफात, तमाम आज़ा और तमाम हवास में तगैर वाक़िया हो जाता है, और यही तब्दीली जमानियत भी कहलाती है और यही तब्दीली मकानियत है। अब यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाने को इस बात की वजाहत के लिए अगर आपसे एक मिसाल शेयर करूँ, बचपन में तो ये बहुत आम होता है, ज़रा बड़े हो जाएं तो हमें ज़रा तसव्वुर करने में दुश्वारी होती है, लेकिन अगर अब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ आपकी समझ में फ़ौरन आ जाएगी। मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ लीमू। अब आपने लीमू सुना तो क्या हुआ, ये लीमू मेरा कहना एक इत्तला है। आपके जहन ने इस इत्तला को सुनते क्या किया, एक इल्म का एहसास किया जो लीमू के बारे में है। अब उस इल्म में क्या हुआ कि जब आपका जहन इस लीमू पे रुका और लीमू का ख्याल गहरा होना शुरू हुआ तो आपके जहन में उसके खदो खाल आने लगे, उसका रंग रूप और उसकी नक्शो निगार उभरने लगे, उसकी गोलाई जहन में आने लगी और आपके जहन में और ज़्यादा एहसास पैदा हुआ तो आपने कहा अच्छा ये इसमें तो खटास होती है, यानी लीमू गोया आपके साथ गोया हो गया, बोलने लगा और उसने अपनी सिफात आपसे शेयर करना शुरू कर दी। मज़ीद गहराई पैदा हुई तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि आपको उसके रंग वाजे होने शुरू हो गए और आपने जब उसको काटने का सोचा तो आपको उसके खटास का इतना गहरा तासुर उभरा कि आपके मुंह में पानी आ गया। ये सब क्या हुआ कि एक इत्तला के ज़ेरे असर वो ख्याल तसव्वुर बना, तसव्वुर ने एहसास की शक्ल इख्तियार कर ली। अब ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक कामों में से या हरकतों में से या हमारे तजर्बात में से एक बात मैंने मिसाल के तौर पे अर्ज़ की। तो इससे क्या हुआ कि ये बात आपके को समझना आसान हो गया। देखिए वही बात बताई जा रही है कि जो पहले सफ़े पे थी कि भाई एक इत्तला प्रेशर क्रिएट करती है, उससे वहमा बनता है, वहमे से ख्याल बनता है, ख्याल तसव्वुर बनता है, तसव्वुर से एहसास बनता है, फिर उस एहसास का एक तासुर कायम होता है। अब उस तासुर का जैसे आपने खाना खा लिया, खाने से पहले उसके ख्यालात जितने थे जब खा लिया तो अब उसकी याद या तसव्वुर बाकी रहा, फिर वो याद बन गई, वो ख्याल के तौर पे याद रहा हमने फलां जगह टिक्के खाए थे, फिर वो एक वापस वाहमा बन गया। तो ये नजूल और सऊद के 6 दर्जे हर वक्त हो रहे हैं, हर लम्हा हो रहे हैं। हमारा जहन बातनी तौर पे ये सब कुछ कर रहा है, हमें शौरी तौर पे इसको समझने ये समझाने के लिए सारी बातें फरमाई जा रही है। बच्चा शौरी और लाशौरी तौर पर इस बात को समझ रहा है या गैर इख्तियारी तौर पर ये बात उसके शऊर में रिकॉर्ड हो रही है कि मैं एक लम्हे से गुजर कर दूसरे लम्हे में और एक घंटे एक दिन एक माह एक साल से दूसरे साल में दाखिल हो गया हूँ। जिंदगी का ये सफ़र जमानियत और मकानियत पर कायम है, यानी टाइम एंड स्पेस हमें इस बात का इल्म देता है कि अभी हम जिस चीज़ के करीब थे एक मुय्यन मकदार और तवाज़न के साथ रफ्ता रफ्ता उससे दूर हो रहे हैं। ये दूरी जब जिंदगी को मुहित हो जाती है, यानी दूरी से मुराद ये कि वो नुक्ता जिसकी हैसियत इल्म और अलीम की है, इल्म और अलीम। इल्म क्या है, देखे ना मैं एक लफ्ज कहूं कि मैं हूं, मैं हूं, तो मुझे अपने होने का एहसास इल्म है और ये मैं जो है ये अलीम है, क्योंकि जो जानता कौन है कि मैं हूं। तो जब आप कहते हैं मैं हूं तो ये मैं और हूं, इसमें से हूं इल्म है और मैं अलीम है। तो वो नुक्ता जिसकी हैसियत इल्म और अलीम की है, इल्म नजूली से दूर हो रहा है, यानी इंतहा पे पहुंच के वो वापसी का सफर लेना शुरू करता है यहाँ तक के मौत वारिद हो जाती है, इसी का नाम मौरत। मौत वारिद होने के बाद, यानी जब आप किसी नुक्ते के करीब आते हैं, फिर वहां से वापसी का जो सफर होता है इसी को मौत कहते हैं। अब हमने मौत को क्या बनाया हुआ है वो आप देख लीजिए, और जो मुर्शिद करीम बता रहे हैं, जो हजूर कलंदर बाबा औलिया ने बताया है, वो देख लीजिए और उससे कंपेयर कर लीजिए कि जब हम मौत वारिद होने के बाद रूह अपने उन तजर्बात से, जिन तजर्बात पर जमानियत और मकानियत का कयाम है, एक नया इल्म सीखती है। ये है सारा निजाम जो हमें इन चीजों से वाकिफ कराने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरा निजाम कायम किया कि हम जमानियत और मकानियत से वाकिफ होकर एक नया इल्म का एक नया रूप, एक नया रुख देख लें। और ये नया इल्म मकानियत या जमानियत में बंद होकर सामने नहीं आता, यानी इस इल्म से वाकिफ होने के लिए हमें देखें ना, मकानियत और जमानियत का तजुर्बा होना और फिर जहन को उस तजुर्बे से ऊपर उठाकर उसको समझना, ये दो बातें। मफहूम ये है कि रूह गोश्त पोस्त के जिस्म के बगैर भी देखती है, उसकी आंखों के सामने फिर एक ऐसी दुनिया आ जाती है जो गोश्त पोस्त की आंख से नजर नहीं आती। कायनात को निगाह किस तरह मिली, कायनात ने अपने अलावा दूसरी मखलूक का किस तरह इदराक किया, यानी दूसरी मखलूक के बारे में उसको इल्म कैसे हासिल हुआ और निगाह का कानून क्या है, ये सब तफसील के साथ बयान किया जा चुका है। अल्लाह ताला को जब मंजूर हुआ कि मौजूदात का सकूत टूटे, यानी पहले दर्जे पे सिर्फ उसको ये एहसास था कि मैं हूं, लेकिन वो एक सकूत की हालत में थी। तो जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि मौजूदात का सकूत टूटे, यानी खामोशी टूटे, वो जो उनके ऊपर स्टिलनेस है, इनर्शिया तारी है, उससे वो बाहर निकल आए और हरकत का आगाज हो, तो अल्लाह ताला ने मौजूदात को मुखातिब करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम। जैसे ही अल्लाह ताला की आवाज कायनात की बिसात पर गूंजी, एक गूंज पैदा हुई, तो कायनात में मौजूद हर शख्स, हर शय उस आवाज की तरफ मतवज्जो हो गई। आवाज की तरफ मतवज्जो हो गई और मखलूक में शऊर की बुनियाद बढ़ गई। बच्चा पहले आवाजें सुनता है तो उसमें शऊर की बुनियाद पड़ जाती है। इस शऊर ने अल्लाह ताला के रब होने का एतराफ किया। जब मौजूदात की फहम में ये बात आ गई कि हमारे अलावा भी कोई हस्ती है, पहले तो सिर्फ था ना कि मैं हूं, फिर कहा किसी ने पुकारा तो कोई और भी है, तो और उस हस्ती ने हमें तख्लीक किया है, तो मौजूदात ने अपने अलावा दूसरी मौजूदात को देखा, यानी उन्होंने न सिर्फ अपने खालिक को देखा बल्कि अपने जैसी दूसरी मौजूद चीजों को भी देखा, मौजूद अशिया को, मौजूदात जो चीजें मौजूद थीं, तो इस देखने को आलम मिसाल कहते हैं। इस देखने को, क्योंकि अभी वो मादी जोन में नहीं थे, लेकिन कसरत तखलीक हो गई, क्योंकि वो अपने अलावा खालिक को भी देख रहे हैं, रू ने खालिक को भी देखा और दीगर मौजूदात को भी देखा, तो इसे फिर आलम मिसाल भी कहा और ब्रैकेट में लिख दिया कि यह है कसरत। इसी कसरत को आलम मिसाल या आलम जू भी कहते हैं, दोबारा दोहरा दिया। अब इसकी समरी सुन लें। यह लफ्ज समरी पेज नंबर 60 पे लिखा हुआ लफ्ज, अल्लाह ताला की जात का अक्स इल्म वाजिब कहलाता है या इल्म कलम कहलाता है? अल्लाह ताला की जात का अक्स, अल्लाह ताला की जात नहीं, जात अलग है, उसका अक्स जो है उसी का नाम इल्म वाजिब है और उसी को इल्म कलम कहा जाता है। और फिर इल्म वाजिब का अक्स इल्म वहदत है या इल्म लोहे महफूज है? अब इल्म वहदत से मुराद कायनात की वो मौजूदगी है जहाँ कायनात गुम सुम अपने एहसास के अलावा कुछ नहीं जानती थी। अब ये लोहे महफूज का अक्स आगे आलम तिमसाल बना रहा है, आलम तिमसाल का अक्स आलम तखलीक यानी जहाँ चीज़ें या रोशनियाँ खल्त मल्त होकर आलम नासूत यानी के मैटर बना रही हैं। ये इसकी सारी समरी पूरे निज़ाम की चार लाइनों में बता दी कि अल्लाह की ज़ात का अक्स है, फिर अल्लाह की ज़ात के इस अक्स का नाम रखा इल्म वाजिब या इल्म कलम, और इल्म वाजिब या इल्म कलम का अक्स जो है वो इल्म वहदत है या इल्म लोहे महफूज है, और इल्म वहदत का जो अक्स है या इल्म लोहे महफूज का जो अक्स है उसे आलम तिमसाल कहा, तिमसाल के बाद आलम तिमसाल का अक्स जो है वो आलम तखलीक हुआ। तो गिन लीजिए ये कितने दर्जे बने, एक आलम तखलीक, एक आलम तिमसाल, फिर एक लोहे महफूज, फिर एक इल्म वाजिब और एक अल्लाह की ज़ात। तो एक दो तीन चार पाँच, ये पांच दर्जे बने जी। यहाँ तक काफ़ी है या आगे चलें? जैसे हुक्म सर। बिल्कुल नहीं नहीं, आप इसे मुश्किल गर्दानेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। अगर देखें हमने इसे मुश्किल डिक्लेयर कर दिया तो ये मुश्किल हो गया। आप मुश्किल में से मीम हटा दें तो क्या चीज बनेगी? शक्ल। तो इस हाँ तो इसकी शक्ल को उभारें कि एक अल्लाह की जात है, एक उसका अक्स है। सॉरी ये छह ही चीजें बनी, एक अल्लाह की जात है, एक उसका अक्स है, उस अक्स का नाम है इल्मुल वाजिब या इल्मे कलम, फिर उसका अक्स जो है इल्मे वादत है या लोहे महफूज का, फिर अक्स जो है वो इल्मे आलम तमसाल है, और फिर आलम तिमसाल का अक्स जो है वो आलम तखलीक है या आलम नासूत। बस कितना ये छह जुमले लफ्जों को याद कर लें तो इंशाल्लाह ये जहन नशीन होता चला जाएगा। ठीक हो गया जी?